ये छह श्लोक हो गए थे, आज सातवां श्लोक है। ये सातवें श्लोक में परीक्षित कह रहे हैं, वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम अंत वही पुरुष काल रूपै प्रयक्षता मृत्युम उत अमृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। जिस चीज की आपको जिज्ञासा है, जिज्ञासा का मूल कारण वैराग्य है। यदि ईश्वर विषय जिज्ञासा है, दो प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, या तो सृष्टि विषयक जिज्ञासा होगी या तो सृष्टा विषयक जिज्ञासा होगी। जिस व्यक्ति का जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वैराग्य आपको साधन संपन्न होने के बाद वैराग्य हुआ, जब साधन किए तब वैराग्य हुआ, बोध से वैराग्य हुआ, अथवा किसी परिस्थिति के कारण वैराग्य हुआ। परीक्षित को बोध के कारण वैराग्य नहीं हुआ, एक परिस्थिति के कारण वैराग्य हुआ। लेकिन एक परिस्थिति जो उसके सामने उपस्थित हुई, उस परिस्थिति ने उसको ईश्वर की तरफ मोड़ दिया। उस ईश्वर का उसको सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान जो है वो अज्ञान को निवृत्त करने में समर्थ नहीं होता जब तक ज्ञान विशेष न हो जाए। विशेष होना जरूरी है। तो परीक्षित को सामान्य रूप से परमात्मा का बोध है। ये श्लोक यदि कभी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा अर्थ को लेकर के, इस श्लोक के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है वो। वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम अंत वही पुरुष काल रूपई। हे विद्वान, विद्वन संबोधन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज को। हे विद्वन, क्योंकि विद्या शब्द का अर्थ होता है जो विद्या या सा विमुक्तये, विद्या का अर्थ होता है जो व्यक्ति को मुक्ति दिलाए। बंधन हमारे जीवन में हमें तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है। जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान होता है तो व्यक्ति मुक्त होने की कोशिश करता है। तो ये कह रहे हैं हे विद्वान, क्योंकि वो मुक्त स्वरूप ही है। कौन? सुखदेव जी महाराज। और परीक्षित को परमात्मा का सामान्य ज्ञान है। अब ये श्लोक के अंदर जो है ना, इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मां के गर्भ में भगवान के दो रूप बता रहे हैं यहां पे। अंत वही पुरुष काल रूप ही पर्यक्षता मृत्युम उत अमृतम च। मौत भी वही है और जीवन भी वही है। जीवन बन के वो अमृत है और काल बन करके वो मौत है। परमात्मा को समग्र रूप से देखने की कोशिश है। जीवनम बन के अमृत है और काल रूप से क्या है? मृत्यु है। अब थोड़ा सा यदि छठे श्लोक को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ध्यान आएगा, मां के गर्भ में जो बचा रहे हैं वो भी परमात्मा है। वो कौन है? जीवनम अमृतम। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के अंदर जो है वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र में भी वही परमात्मा ही है, वो बाहर से वह परमात्मा मृत्यु रूप है। तो मृत्यु रूप भी वही है और जीवन रूप भी वही है। यदि बड़ी सुंदर बात, मृत्युम उत अमृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। हे विद्वान, जीवन और मृत्यु रूप जो परमात्मा है, जीवन रूप से अमृत है और काल रूप से मृत्यु है। और दृष्टांत दे दिया किसका, अंदर जो गर्भ में गए हैं वो जीवन रूप से हैं और बाहर से जो ब्रह्मास्त्र के रूप में है वो क्या है, काल रूप से हैं। ये कौन देता है, माया मनुष्य, मनुष्य नहीं है, माया से मनुष्य रूप से जो प्रतीत हो रहे हैं ऐसे माया मनुष्य जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा के क्या करो आप, वीर्याणि वदस्व, उस परमात्मा के पराक्रम का आप मेरे सामने वर्णन करिए। तो एक बात आप समझ लीजिए, जब तक आपको सामान्य ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके अंदर विशेष ज्ञान की जिज्ञासा नहीं हो सकती। तो परीक्षित के अंदर परमात्मा संबंधी सामान्य ज्ञान है, क्योंकि परीक्षित ने भागवत के प्रथम स्कंद में ये बात कही सुखदेव जी, अभी तो दसम स्कंद चल रहा है, प्रथम स्कंद में उसने कहा कि कहीं जन्मांतर में मेरा पुण्य तो रहा होगा कि मैं उस वंश में पैदा हुआ जिस वंश के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने, कहीं मेरा कुछ पुण्य तो होगा। और फिर विपत्ति के समय ईश्वरोन्मुख हो जाना, संपूर्ण जीवन ऐश्वर्य से संपन्न है और ऐश्वर्य से संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति ईश्वर उन्मुख हो जाए, ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। वो बोलते हैं उन परमात्मा के पराक्रमों के बारे में मेरे को बताइए। तो सामान्य ज्ञान जो परीक्षित को है उसके बारे में, अभी भागवत शुरू नहीं हुआ यहां पे, अभी परीक्षित ही, लेकिन ये भागवत का बीज है। वो जो अपना सामान्य ज्ञान उसका है, वो सामान्य ज्ञान के बारे में वो विशेष ज्ञान जानना चाहता है। क्या है, देखो सात नंबर का श्लोक हो गया कि जीवन और मृत्यु, तो गर्भ के अंदर जो रक्षा कर रहा है वो अमृत है और ब्रह्मास्त्र के रूप में जो मार रहा है वो कौन है, काल रूप। तो काल रूप से मृत्यु है और जीवन रूप से अमृत है। क्योंकि कभी कभी अपने लोग, मैंने आपको कई बार सुनाया भी होगा कि कभी कभी अपने ये कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, कभी बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आपको सही लगता है ये मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है? हमको तो लगता है मारने वाला बड़ा है। यहां पे कितनों की फोटो लगती हैं, कितनी बार हम लोग आते हैं इधर, शाम को लगती हैं सुबह चली जाती हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, महत्व जीवन का है। जीवन ने तुम्हारा परिचय, इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है। जब तक वो आपको पकड़ के रखती है तब तक आपको सब पकड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन वो आपका परित्याग कर देती है, जिस दिन वो आपको छोड़ देती है, उस दिन सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। सब बोलते हैं अभी जल्दी करो, निकालो बाहर अभी। तो मृत्यु बड़ी है कि जीवन बड़ा, कौन से बड़ा है, मारने वाला कि बचाने वाला? हाँ, हकीकत बात यह है दोनों एक ही हैं। और जिस रूप में आपको उसकी आवश्यकता है उस रूप में वो आपके सामने उपस्थित होता है। बस जब मृत्यु रूप में आवश्यकता होती है तो मृत्यु रूप से उपस्थित होता है, उस समय जीवन रूप से नहीं दिखाई देता, और जिस समय जीवन रूप से दिखाई देता है उस समय मृत्यु की स्मृति नहीं रहती, तभी तो संसार का आनंद व्यक्ति ले सकता है, नहीं तो ले नहीं सकता। इसलिए परीक्षित को भगवान का सामान्य ज्ञान अच्छी प्रकार से है, आप समझ लेना, तभी वो सुखदेव जैसे महापुरुष के सामने बैठ सका, क्योंकि सुखदेव के सामने बैठना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य, उसका उद्देश्य ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। उस व्यक्ति के सामने वही व्यक्ति टिक सकता है जिस व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर को जानना और ईश्वर को पाना हो। इसलिए उसने कोई इधर उधर की बात नहीं करी परीक्षित ने, क्या कहता है देखो, जिस बारे में उनको संशय है, आठवें नंबर का श्लोक देखो, रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया दिव्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। हे प्रभु, कभी आपने चर्चा के दौरान ये बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, और फिर आपने ये बता दिया कि वो देवकी के सातवें पुत्र हैं। तो एक ही जन्म में दो का पुत्र देहांतरम बिना, देखो विश्वामित्र जी महाराज राजा थे और राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग कर दिया तो राज ऋषि बन गए, लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि बनने में कितना समय लगा मालूम है आपको? अपार साधना, ऐसी साधना कोई कर नहीं सकता, तब ब्रह्म ऋषि बने। फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अंदर ये बात है कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन यदि विधाता की सृष्टि में हो, क्षत्रिय मरा और किसी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हो गया, बात खत्म हो गई, राज ऋषि क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि बन गया। 10 महीने की बात है, सारी जिंदगी खपाने की कोई बात नहीं है। मनुष्य अपार पुरुषार्थ से जो नहीं कर सकता, प्रकृति वो सहज भाव से कर लेती है, अथवा मनुष्य अपने जीवन में अपार पुरुष, यहां समझोगे ना, ये परीक्षित का दिमाग भी बहुत ऊंचा दिमाग है। वो कहता है देहांतर बिना कैसे हुआ ये? कभी महात्मा आपको समझाते हैं, एक भूकंप आता है, मनुष्यों ने 50 सालों में जो तरक्की किया, भूकंप कितने देर का होता है मालूम है आपको? 15-20 सेकंड का होता है, और आदमी की 50 साल की मेहनत के ऊपर प्रकृति पानी फेर देती है, तो प्रकृति के सामने तो आदमी लाचार है। अभी तो ऐसा कहते हैं कि विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन अभी तक सिर का बाल नहीं बनाया, इसलिए तिरुपति बालाजी के बाल बहुत महंगे बिकते हैं मालूम है आपको, बहुत तरक्की की। इसलिए बता रहे हैं, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। एक तो आपने कहीं बीच में कहा वो रोहिणी के पुत्र थे, फिर आपने उनको देवकी का पुत्र बता दिया। प्रकृति में कहीं ऐसा होता नहीं है कि देहांतर संबंध हुए बगैर कोई दो मां का एक पुत्र हो जाए। ऐसे आप भी ध्यान में यदि बैठेंगे थोड़ी, तो अपनी मां के बारे में सोचेंगे, तुम्हारी कितनी मां निकलेंगी पीछे, तो पता लग जाएगा तुम्हारे को, कोई सींग पूंछ वाली भी मम्मी होगी बड़ा विलक्षण है जीवन। वो कहता है देव क्या गर्व संबंध कुतो देहांतरम बिना, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो ईश्वर है, ये ईश्वर का महात्म्य जब बुद्धि में बैठ जाता है तभी इस प्रकार की सोच होती है, ये व्यक्ति नहीं कर सकता। चलो आगे प्रश्न सुन लीजिए थोड़ा सा, अभी केवल प्रश्न ही प्रश्न चल रहे हैं, जब इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे तब शायद थोड़ा बहुत आपको आनंद आएगा। कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुगेहात् ब्रजम गता को वासम ज्ञाति विसार्दम कृतवान सात्वताम पति। हे भगवान, जो मुकुंद हैं, देखिए संबोधन भी व्यक्ति क्या देता है, जिसकी आकांक्षा होती है संबंध भी वही देता है। हर कोई व्यक्ति परमात्मा से मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति वही व्यक्ति चाहता है जो पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को महत्व को सम्यक प्रकार से समझ गया हो, जो पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य का अभाव जिस व्यक्ति के जीवन में है वो व्यक्ति परमात्मा के चरणों में बैठ करके भी मुक्ति नहीं मांग सकता। आपको ये बात का यदि बोध करना है तो आप भागवत के चतुर्थ स्कंध में चले जाइए, जब ध्रुव जी महाराज और बाद में जब अफसोस करते हैं वो, क्योंकि वासना यदि जीवन में रह जाती है भगवान का साक्षात्कार करने के बाद भी जीवन में क्रोध रहता है कि नहीं रहता? रहता है भगवान का साक्षात्कार करने के बाद। ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार किया था कि नहीं? यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, भगवान का साक्षात्कार किया। और आपको तो बताता हूं, प्रेमपुरी वाले तो भागवत सुन सुन के तो पूरे टपक चुके हैं अभी। फिर जो भगवान का साक्षात्कार करने के बाद जो उसका क्रोध दिखाई दिया, जो यक्षों को उसने मारा, इतना भयंकर कत्लेआम मचाया क्रोध के कारण, उसको समझाने के लिए कौन आया? मनु महाराज। मनु ने कहा क्या कर रहा है तू, आदमी के गले पे गला काटे जा रहा है। मनु के समझाने से वो हिंसा से निवृत्त होता है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि खाली ईश्वर की चर्चा सुनने से तुम काम क्रोध से मुक्त थोड़ा ही हो सकते हो, काम क्रोध से मुक्त अपने को समझ सकते हो। आदमी की तो खासियत यही है कि वो जो नहीं है वो अपने को समझता है। आदमी बनना ही शुरू तब होता है वो जो है वो पहले अपने को समझे। और जिस दिन आप जो हो वो अपने को समझने लगते हो, उस दिन आपके जीवन में प्रगति की नई राह खुल जाती है। उसके पहले प्रगति की राह नहीं खुलती है, और जब तक राह नहीं तब तक चाह नहीं, चाहत भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कस्मात् भगवान मुकुंदो, भगवान जो मुकुंद हैं वो पितुगेहात् वसुदेव जी महाराज के घर से ब्रजम गतः, ब्रज में कैसे चले, क्यों चले गए, कस्मात् माने क्यों, क्यों चले गए? क्व वासं ज्ञाति भी सार्धम, और भगवान जो सात्वताम पति हैं उन्होंने अपनी जातियों के साथ में क्व माने कहां कहां, भगवान ने कहां कहां वास किया। इसलिए जो बहुत बड़े साधक होते हैं वो भगवान की लीलाओं के साथ में इतने खो जाते हैं, उन लीलाओं के साथ में अपने को इतना संलग्न कर लेते हैं कि वो भागवत में ऐसा लिखा है, इतर राग विस्मारणम, किसी इतर वस्तु के प्रति राग नहीं होता, किसी इतर वस्तु के प्रति राग नहीं है। और राग जो होता है ना, पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन में, सुखानुसायी राग, राग कहते हैं जहां से सुख मिले वहां से मनुष्य का राग हो जाता है। बताओ, तुम्हारा लड़का तुमको रोज सताता है, शिकायत भी करते हो, लड़का ऐसा करता है वैसा करता है, उसको पूछो ठीक है इतना सताता है लड़का तो मरने के बाद संपत्ति किसको देके जाओगे, प्रेमपुरी को देके जाओगे? नहीं, बोले लड़के को ही देके जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राग, इतर राग विस्मारणम, इतर वस्तु मैंने परमात्मा के सिवाय किसी दूसरी वस्तु से सुख नहीं मिल सकता, इसका नाम है इतर राग विस्मारणम, सुखानुसायी राग। ये निश्चय हो जाए मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक चीज से उब जाता है, पत्नी से भी उब जाता है, धन से भी उब जाता है कभी कभी, पद से भी उब जाए, लेकिन कभी कोई आदमी ऐसा नहीं मिला होगा कि बोला महाराज मैं सुख से कंटाल गया। कोई मिला आपको ऐसा जो बोले कि मैं सुख से कंटाल गया, अभी मेरे को सुख नहीं चाहिए? साधना का मूल स्रोत भागवत यही कहती है, इतर राग विस्मारणम, इतर इतना निश्चय हो जाए कि परमात्मा के सिवाय किसी दूसरी वस्तु में सुख नहीं है, तो इतर के प्रति राग की विस्मृति हो जाती है। विस्मरण मैंने भुलाने के लिए, इतर वस्तु के प्रति राग को विस्मृत कराने के लिए, इसलिए कहते हैं ब्रजे वसन किम अकरोद मधुपुर्याम च केशवा भ्रात्रम च अवदीत कंस मातु अद्दा अतद अर्हणम। सुखदेव परीक्षित कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, सच्चा साधक वही होता है जिसके दिल से सच्ची बात निकलती है। वो कहता है अतद अर्हणम, ये बात मेरे को भगवान की उचित नहीं लगी। कौन सी बात? ब्रजे, पहले पूछा ब्रजे वसन किम अकरोत, जो केशव हैं उन्होंने ब्रज में रह करके क्या किया? ब्रजम बसे किम अकरोत, अच्छा मधुपुरियाम च केशवा, और मथुरा में रह करके फिर क्या क्या किया ब्रज में और मथुरा में? यदि प्रश्न याद रहेंगे तो शायद जब उत्तर का समय आएगा तब तक तो समय ही पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि ये प्रश्न याद रहेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर जब मिलेगा तो शायद थोड़ा आनंद आएगा। ब्रजे बसन किम अकरोत मधुपुर्याम च केशवा भ्रात्रम च अवदीत कंसम मातु, मातु भ्रात्रम कथम अवदीत, अपने मां के भाई को उसने क्यों मारा? अतद अर्हणम, वो बात कुछ उचित नहीं। अतद अर्हण का अर्थ होता है करने योग्य नहीं है, तो कुछ ऐसा काम कर दिया जो करने योग्य नहीं था। ये परीक्षित, उसका हृदय कितना स्वच्छ होगा। और शायद मुझे लगा कि सुखदेव जी महाराज के सामने इसीलिए बैठ पाया वो कि उसके मन में और वाणी में एकता है। नहीं, यदि मन और, क्योंकि कृष्ण के आपने तो सुना ही है, क्योंकि कहते हैं सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के स्वरूप को इतने विज्ञ थे कि एक पल के लिए भी उनको विस्मृति नहीं होती थी। इतने विज्ञ हैं, आत्मज्ञ हैं वो। इसलिए भागवत में सुखदेव का विशेषण दिया है, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टः। बाहर से कोई अलक्ष्य है, अलक्ष्य मेरे जैसे साधु को देखते हो, हमको देखा आपने तो बोला ये साधु है, साधु हूं कि नहीं तो आप भगवान ही जाने, लेकिन देखा क्योंकि लाल कपड़े पहने, सिर पे टीका ओका लगाया, भस्मी उसमें लगाई है, तो बोला ये साधु है। सुखदेव जी महाराज का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, अलक्ष्य लिंगो, लेकिन शरीर पे कुछ ऐसी चीज नहीं है, लेकिन चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता है, ऐसी प्रसन्नता है कि जैसा जीवन में जो पाना है वो उसके अंदर ही है। जैसे जिस खजाने को आप ढूंढने जाएं और वो खजाना आपके अंदर ही मिल जाए तो आपके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टः, जो तुष्ट मैंने संतुष्ट, तो किससे संतुष्टि है, निज लाभ अपने को पाने की। तो अपने को पाने की खुशी तभी हो सकती है जब अपना यथार्थ स्वरूप व्यक्ति समझे, तभी अपने को पाने की खुशी हो सकती है। जब तक अपना यथार्थ स्वरूप नहीं समझता तब तक अपने को पाने की खुशी नहीं हो सकती। इसलिए बता रहे हैं, देख लो, इसलिए उन्होंने कहा कंसम मातुर अतद अर्हणम। हे प्रभु, अतद अर्हणम, ये काम कुछ उचित सा नहीं लगा मेरे को, इसका भी आप जरा समाधान करिएगा। जो जो उसके बाद, अच्छा आगे लीजिए 11 नंबर। अभी बहुत तेजी से श्लोक चल रहे हैं, समय अभी कल तक 6 ही हुए थे, आज 11 पहुंच गए हम लोग। देखो, देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभि यदुपुर्याम स अवासीत पत्न्या कत्यभवन प्रभो। जिज्ञासा उसकी जबरदस्त हो गई, क्योंकि सामान्य सुना होगा उन्होंने, क्योंकि परीक्षित के मन में जिस प्रकार की जिज्ञासा है, साक्षात ब्रह्मा जी की सांसों से उत्पन्न होने वाले नारद जी महाराज की जीवन में भी कृष्ण के चरित्र के प्रति संशय कि भगवान किस प्रकार से द्वारिका में रहते हैं, इसके बारे में उनको भी संशय हो गया। किसको? नारद जी को। यदि नारद जी महाराज को संशय हो गया तो परीक्षित जी महाराज की बात क्या है। लेकिन जब नारद जी वहां गए द्वारिका में, ऐसा भगवान का स्वरूप देखा, ऐसा भगवान का स्वरूप देखा कि चित्त में जितनी शंकाएं थी सारी की सारी, देखो या तो शंका का समाधान तभी हो सकता है ईश्वर का डायरेक्ट साक्षात्कार हो जाए, और या ऐसा सौभाग्य तो व्यक्ति को मिल सकता है, किसी एक व्यक्ति को, लेकिन समाज को इसका लाभ वही व्यक्ति देता है जिसने अपने अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो अपना आत्मा में साक्षात्कार करने वाले सुखदेव जी महाराज को बोलते हैं मानुषम देहम आश्रित्य। देखो, हम लोग इस शरीर के अंदर जो आए हैं वो कर्म के वशीभूत होकर के आए हैं। भागवत में एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर कहते हैं कर्म अकर्म विकर्मेति वेद बादो न लौकिका वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् यत्र मुह्यन्ति सूरया। कर्म अकर्म विकर्म, इनका निरूपण मनुष्य नहीं कर सकता। वेद बादो, इनके स्वरूप का निश्चय वेदों के द्वारा ही किया जा सकता है। बोले वेदों के द्वारा किया जा सकता है, क्यों? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं योगेश्वर, वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्। वेद जो हैं वो साक्षात ईश्वर की आत्मा है। इसलिए कभी हमने आप लोगों को बताया कि वेद अपौरुषे है, शास्त्रों में वेदों को अपौरुषे बताया, सृष्टि को अपौरुषे नहीं बताया। ये आकाश हवा अग्नि जल पृथ्वी वनस्पति ये आपने बनाई, लेकिन इसके लिए परमात्मा को संकल्प करना पड़ा और संकल्प से फिर ये सृष्टि हुई। लेकिन वेदों के लिए परमात्मा को संकल्प नहीं करना पड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं योगेश्वर, वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात्। वेद जो हैं वो ईश्वर की आत्मा, आत्मा मैंने श्वास, निश्वसितम अस्य वेदा, तो श्वास लेने के लिए आपको संकल्प नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक जगह ऐसी होती है जहां संकल्प विकल्प करने वाला मन नहीं होता और आपकी सांसें चलती हैं, वो कौन सी जगह है? सुसुप्ति। मनसो ही अमनी भावो मनो मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतस्तु परमार्थता, मनसो ही अमनी भावो द्वैतम नैव उपलभ्यते। उस सुसुप्ति अवस्था में आपका मन नहीं होता, और यदि मन नहीं है तो संकल्प विकल्प नहीं है, लेकिन आपकी सांसें यथावत चलती रहती हैं। इसीलिए वेदों को परमात्मा की सांसें कहा, और इसीलिए बताया कि वेद अपौरुषे हैं, इसके करने में इसको बनाने में पुरुष का कर्तृत्व भाव नहीं है। जैसे हमारा जीवन में सबके प्रति हमारा कर्तृत्व भाव है ना, क्योंकि जितने हम लौकिक वैदिक कर्म करते हैं तो पंडित जी के सामने बैठ करके सबसे पहले संकल्प करते हैं, करते ही नहीं करते, लेकिन सांस लेने के लिए आप कौन सा संकल्प करते हैं? देखो एक शास्त्रों में एक बात लिखी है, आत्मसिद्धि पूर्वकम ही सर्वेशाम सिद्धि, चाहे बाथरूम में बैठो तो भी सांस चलनी जरूरी है, चाहे पूजा में बैठो, चाहे स्नान घर में जाओ, चाहे धंधे पे बैठो, सांसों के बिना किसी चीज की सिद्धि नहीं है। आप सोचोगे चलो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां सांस बंद करके अपना काम कर लें, करके देखना आज कोशिश। इनके द्वारा ही सब कुछ होता, सबसे पहले सांसें चलेंगी फिर पूजा होगा। लौकिक वैदिक जितने भी कर्म हैं ये तभी होंगे जब आपकी सांसें चलती हैं। यदि सांसों का चलना बंद हो गया, मैंने कभी बताया था ना, एक ने बहुत सुंदर लिखा है, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सब सांसों का इतिहास। पाना खोना खोजना जिंदगी यही है, पाना खोना, क्या पाया? बुढ़ापा। क्या खोया? जवानी। क्या खोज रहे हो? अपने को। तो पाना खोना खोजना ये तीनों चीजों में सांसों का योगदान बराबर है। जिंदगी कुछ नहीं है, एक सांसों का इतिहास, जब इतिहास पढ़ते हो ना आप कभी, बाबर का इतिहास पढ़ते हो, पृथ्वीराज चौहान का तो पढ़ते नहीं हो, महाराणा प्रताप का तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो इतिहास, ऐसे ही जिंदगी के बारे में कभी पढ़ो तो ये जिंदगी भी इतिहास है। किसका? सांसों का इतिहास। इसलिए बता रहे हैं, चलो, देहम मानुषिम आश्रित्य, इस मानुष देह का भगवान ने आश्रय लेकर के कति वर्षाणी वृष्णि भी, वृष्णि वंशियों के साथ में भगवान कितने वर्ष रहे, ये सब उसने कृष्ण के बारे में जिज्ञासा की है। और आगे की जो पंक्ति है उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। ये तदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञम् श्रद्धानाय विस्तृतम्। बता दिया उन्होंने। यहां पर सुखदेव जी के लिए मुनि शब्द का प्रयोग कर दिया। संबोधन बदलता रहता है। सुखदेव जी महाराज मननशील हैं, मननशील हैं, मनस्वी हैं, बुद्धिमान, मनीषा बोलते हैं संस्कृत में बुद्धि के लिए, मनस्वी व्यक्ति है। उसे कहा, उन्होंने कहा, एतद् अन्यच्च सर्वम मे, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं कि मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ पूछ सकूं। जितनी मेरी बुद्धि थी उतना मैंने पूछ लिया और बहुत कुछ रह गया। यस अन्यच्च जो रह गया, क्या? कृष्ण विचेष्टितम्, कृष्ण के द्वारा की गई संपूर्ण चेष्टाएं। वक्तुम अर्हसि, आप मेरे को बताने की कृपा करें, क्यों? अब इसमें दो चीजें बताई उन्होंने बड़ी मजेदार। एक तो आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हो कि नहीं है? अरे सर्वज्ञ, आपके अंदर आपकी कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है। कोई बात आपकी आपसे छुपी है क्या? बहुत करीब से करीब आदमी की बात से आपकी अपनी बात छुपी होगी, लेकिन आपकी अपनी बात कोई आपसे छुपी नहीं है। सुखदेव सर्वज्ञ कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने अंदर देख लिया और अपनी आत्मा के रूप में देख लिया, इसलिए वो क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। अच्छा, सर्वज्ञ है, अब बताओ। तो अब सुखदेव दक्षिणा के लिए तो कथा करते नहीं, गौशाला उसकी कोई है नहीं, किसकी? बड़ी मुसीबत है, तो क्यों बताए फिर? तो उसने बड़ा सुंदर बात बता रहा है, आप तो सर्वज्ञ हैं लेकिन मैं श्रद्धा वाला हूं, इसलिए श्रद्धा के कारण मैं आपको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हूं। मेरे पास कोई ऐश्वर्य नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं, ये सब मैंने त्याग दिया। अच्छा, श्रद्धा इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, आप लोगों को कई बार बताते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में फर्क होता है। क्या फर्क होता है बताएं? श्रद्धा अपनी विशेषता से होता है और अपने गुण के कारण श्रद्धा होती है, और दूसरे के गुण के कारण विश्वास होता है। आप कहते हो ना, उस आदमी के भरोसे हम चाबी देकर के आ गए, वो आदमी बड़ा ईमानदार है, 20 साल से हमारे घर में नौकरी करता है, लेकिन कभी कोई वस्तु चुराई नहीं, तो तुम्हारी खासियत नहीं है कि तुम उसको चाबी देकर आ रहे हो? ये खासियत किसकी है? हाँ, विश्वास हमेशा पर प्रदान होता है और श्रद्धा सब। जब आपके अंदर खासियत होती है, जब आपका विकास होता है, जब आपकी चेतना जगती है, तब आपके अंदर श्रद्धा का आविर्भाव होता है। जब दूसरे की चेतना जगती है, दूसरे के अंदर ईमानदारी आती है, तब उस समय दूसरे के प्रति आपके हृदय में विश्वास पैदा होता है। ये कह रहा है, बड़ी सुंदर बात कह रहा है ये, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी क्यों हूं? तो बता रहे हैं, नैसा अति दुस्सह्य क्षुतमां त्यक्त उदम अपि बादते पीवन्तं तुथ त्वत्मुख अम्भोजम अच्युतम हरिकथामृतम्। कहते हैं महाराज, मनुष्य के जीवन में दो ही चीजें मुख्य हैं, भूख और प्यास। कृष्ण ने गीता में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवरज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बड़े से बड़े हाथी को वश में करना होता है ना, अभी तो आपने देखा है कि नहीं देखा बताएंगे, ज्ञानी लोग हो वश में करना तो उसको दो तीन दिन खाना पीना नहीं देते। जब खाना पीना नहीं देते तो हाथी जो है, कृष्ण भी कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, दो दिन खाना पीना छोड़ दो, न झगड़ने की इच्छा होगी, न प्रेम करने की इच्छा होगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, लेकिन ये एक विलक्षण बात कह रहा है, ना नैसा अति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तो उदम अपि उदकम अपि। उदक बोलते किसके लिए, जल के लिए। मैंने कल इस बात का थोड़ा जिक्र भी किया था कि परीक्षित के लिए प्रायोपवेश शब्द का प्रयोग आया, तो प्रायोपवेश शब्द का प्रयोग आता है जब अन्न जल का व्यक्ति त्याग कर देता है। लेकिन इस अन्न जल का परित्याग करते हुए मनुष्य की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन मेरे अंदर भगवान की कथा सुनने की इच्छा और ज्यादा पैदा हो गई। अब भूख प्यास मुझे नहीं बाध रही है, क्योंकि सबसे बड़े बाधक यदि कोई चीजें हैं तो क्या है, इसलिए देखा नहीं, जब भागवत कराते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था ऊपर कर लेते हैं, भागवत सुनने नहीं आते होंगे तो खाने के लिए तो लोग आ ही जाते हैं, ये पक्की बात है। वो कहते खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मत करो, फिर वही बैठेगा जो श्रद्धालु होगा। वो कहते हैं अब खाने पीने से तो मुक्ति हो गई, लेकिन कृष्ण के प्रति चित्त में ज्यादा प्रेम पैदा हो गया, इसलिए मैं श्रद्धायुक्त हूं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं आपसे सुनने का अधिकारी हूं, ये उसने सिद्ध कर दिया। इतना तो अब परीक्षित का हिस्सा पूरा हो गया। अब ये जो कथा है, ये नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जो हैं वो सौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। हमारे यहां ऐसा कहते हैं, ऋषि किसको बोलते हैं, ऋषया मंत्र दृष्टारा। कभी आपको बताते हैं, कई बार समझाता हूं कि भाई पृथ्वी में जो गुरुत्व आकर्षण ढूंढा वो किसने ढूंढा, लेकिन उसने गुरुत्वाकर्षण बनाया नहीं, उसने गुरुत्वाकर्षण जाना। इसी प्रकार से ऋषि जो हैं वो मंत्र बनाते नहीं, वो मंत्रों का दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं। अभी अभी चंद्र ग्रहण लगा था और आपने निर्णय सागर का पंचांग देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा हो पता नहीं। उस पंचांग में पहले ही दे रखा है इतने बज करके इतना लगेगा ग्रहण, इतने बज करके इतना ग्रहण लगेगा, इतना बज करके इतना ग्रहण लगेगा। वो जो फॉर्मूला है वो ऋषि ने पहले ही देखा है उसके आधार पर, तो उसने सूर्य ग्रहण लगाया नहीं, पंचांग वाले ने लगा दिया, लेकिन उसने केवल उसको क्या किया, देखा। इसी प्रकार से ऋषि जब कुछ वार्ता करते हैं तो उसका साक्षात्कार करते हैं। तो सूत जी महाराज ये जो बातें हैं ये परीक्षित की और किसकी, सुखदेव की इन बातों का वो साक्षात्कार कर रहे हैं, और साक्षात्कार करते समय अपने सामने बैठे हुए जो ऋषि हैं उन ऋषियों को बता रहे हैं। तो अब यहां लिखते हैं, देख लीजिए, सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासिकी स भगवान अथ विष्णुरातं प्रात्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकलमसग्नं व्याहर्तुं आरभत भागवत प्रधान। अब कहते हैं सौनक जी से कहा साधुवादं, उनको देख करके भागवत प्रधान, भागवत प्रधान कौन है? सुखदेव जी महाराज भागवत प्रधान है। विष्णुरातम, विष्णुरात नाम है परीक्षित का, विष्णु में जिसकी रति है उसका नाम है विष्णुरातम। परीक्षित की भगवान में अति रति देख करके, रति मैंने प्रेम, प्रेम देख करके कलमसघ्नम पाप को नाश करने वाला कृष्ण चरितम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाना सुखदेव जी महाराज ने आरंभ किया। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं किसको? अच्छा, कथा सुनाने के पहले अब सुखदेव जी यहां से भागवत शुरू हो गई, सुन लीजिए अभी बात, एक श्लोक सुना देता हूं, चार दिन से बैठे हो। सुखदेव जी पहले क्या बोलते हैं देख लो, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रति। यहां से प्रारंभ हो गया। सबसे पहले वक्ता श्रोताओं की प्रशंसा करता है, सबकी प्रशंसा नहीं करता। कौन? ये राजऋषि सत्तमा, राज ऋषियों में श्रेष्ठ, सत्तम ने श्रेष्ठ, ये राजऋषि सत्तमा तब बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, क्योंकि मृत्यु की आहट बड़े बड़े व्यक्तियों के पांव को विचलित कर देती है। एक बारी की बात है, मैं घाटकोपर में कथा करता था वेदांत कुटीर में, एक बामन भाई करके वहां उनकी लड़की है कि पेडर रोड में रहती थी, कभी आती थी, वो बामन भाई को वो डॉक्टर के पास में गए, क्या हो गया कि रिपोर्ट बदल गई, और उनको डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। अब अपने तो भोजन करके दिन में सोते हैं ना, महात्मा होके सोया नहीं और गृहस्थी होके रोया नहीं तो कुछ नहीं। अब उस समय एक महात्मा रहते प्रमोद गिरी जी, बोला बामन भाई का फोन आया, बोला वो कैंसर है और उसको दर्द भी होने लग गया। बड़ी मजेदार बात देखो, और दो तीन दिन के क्या आदमी क्या कर सकता। देखो चूहे कितनी भी मीटिंग करें, जब बिल्ली आती है तो पकड़ के ले जाती है। अब वो बोला ऐसा होने वाला है, तो दूसरे दिन हम लोग उसके घर में गए, उसको बड़ी सांवते बेचारे ने ढोकला ओकला खिलाया, बड़ी सांत्वना उसको दिया, ऐसा है वैसा है अफवाह बहुत, मैं तो कुछ बोला नहीं, जो हम भगत साथ में गए थे वो सब उसको बड़ा बड़ा उपदेश और बड़ा बड़ा आश्वासन देकर के वहां से चार दिन के बाद पता चला कि उसकी रिपोर्ट बदल गई थी। मृत्यु की आहट व्यक्ति को विचलित कर देती, अपने न होने का एहसास ये बड़े से बड़े व्यक्ति को विचलित कर देती है। इसलिए मृत्यु के पहले प्राय करके व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आहट है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, सम्यक व्यवस्थित बुद्धि वही है जो मृत्यु समीप आने पर भी बुद्धि में विचलित न हो, जो व्यक्ति मृत्यु के सन्निकट आने पर भी विचलित नहीं होता उसका नाम है सम्यक व्यवस्थित। व्यवस्थित वही व्यक्ति है, क्योंकि जीवन का मृत्यु एक परम सत्य है, आगे बताएंगे, परम सत्य है, वसुदेव जी महाराज बोलेंगे परम सत्य है। लेकिन परम सत्य जो ये मृत्यु है, इस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि देह के साथ में हमारा गहरा तादात्म्य होता है। मौत भी एक बड़ी कसाई है। कितने रो, कितने गिड़गिड़ाओ उसके सामने, फिर भी पकड़ करके ले जाती है, छोड़ती नहीं है। चलो, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राज ऋषि सत्तमः। ए राज ऋषि, तुम्हारी बुद्धि जो है सम्यक व्यवस्थित हो गई। क्यों? वासुदेव कथायाम यत्ते जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव कथा में जो तुम्हारी रति प्रेम हो गया, इसलिए जो अभी दो मिनट ज्यादा ही हो गया। चलो।